ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। प्रतिनिधि सभा से विभिन्न चार विधेयक हुए पारित। नेपाल नागरिकता विधेयक 2079 संसद से पारित कर पुनः राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरण के लिए भेजने का सत्ता गठबंधन की बैठक ने किया निर्णय। आगामी मार्गशीर्ष 4 गते होने जा रहे चुनाव के लिए 84 राजनीतिक दलों ने करवाया पार्टी का पंजीकरण और भारत के कश्मीर में बस दुर्घटनाग्रस्त होने से हुई इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के 6 जवानों की मौत। अब समाचार विस्तार से। सत्ता गठबंधन की बैठक ने नेपाल नागरिकता विधेयक 2079 को संसद से पारित कर पुनः राष्ट्रपति कार्यालय में प्रमाणीकरण के लिए भेजने का निर्णय किया है। प्रधानमंत्री निवास बालवाटार में आज हुई बैठक ने ऐसा निर्णय किया। ये जानकारी सरकार के प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की ने दी। इसी तरह बैठक ने सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयक के विषय में सरोकार वालों, मानवाधिकार कर्मियों, नागरिक समाज और पीड़ितों से प्राप्त सुझावों पर विचार करते हुए विधेयक को आगे बढ़ाने का निर्णय किया। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक ने विभिन्न चार विधेयक पारित किए। बैठक ने सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक 2079, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद विधेयक 2079 स्टैंडर्ड नाप और तौल, पांचवें संशोधन विधेयक 2078 और प्रत्यायन विधेयक 2078 को पारित किया। इससे पूर्व बैठक में सांसदों ने समसामयिक विषय पर सरकार का ध्यानाकर्षण कराया था। प्रतिनिधि सभा की अगली बैठक भाद्र 2 गते गुरुवार सुबह 11 बजे के लिए बुलाई गई है। आगामी मार्गशीर्ष 4 गते होने जा रहे चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दलों ने निर्वाचन आयोग में दल पंजीकरण करवाया है। बता दें कि निर्वाचन आयोग ने श्रावण 22 गते से दल पंजीकरण के लिए आह्वान किया था। निर्वाचन आयोग ने प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा का आगामी मार्गशीर्ष 4 गते होने जा रहे चुनाव को व्यवस्थित तरीके से संपन्न करने के लिए निर्वाचन की कार्यतालिका को स्वीकृत कर गृह कार्य को आगे बढ़ाया है। बता दें कि आने वाले चुनाव में करीब 10 अरब रूपये खर्च होने का अनुमान किया गया है। आगामी चुनाव के लिए कुल मतदाताओं की संख्या करीब 1,82,00,000 बताई गई है। निर्वाचन आयोग के प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया ने कहा कि चुनाव लोकतंत्र की जीवन पद्धति है, इस विषय को लोगों तक पहुंचाने का काम संचार माध्यमों को करना होगा। राष्ट्रीय समाचार समिति द्वारा आज आयोजित निर्वाचन रिपोर्टिंग अभिमुखीकरण कार्यक्रम में प्रमुख आयुक्त थपलिया ने कहा कि स्वच्छ, निष्पक्ष, भयरहित, विश्वसनीय और पारदर्शी चुनाव के लिए सहयोग पहुंचाने के हिसाब से हर समय की तरह इस बार भी संचार माध्यम अपनी भूमिका बखूबी निभाएगी। प्रमुख आयुक्त थपलिया ने कहा कि संविधान और कानून के मुताबिक 5 सालों की कार्यविधि में चुनाव होने की प्रणाली स्थापित हो चुकी है, जिसे संविधान और संहिता के क्रियान्वयन के लिए उपयुक्त माहौल मिला है, इसलिए सभी को इसे एक अवसर के रूप में लेना चाहिए। नेकपा माओवादी केंद्र ने डॉ बाबूराम भट्टराय नेतृत्व के नेपाल समाजवादी पार्टी को अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। नेकपा माओवादी केंद्र की आज हुई स्थायी समिति की बैठक ने आगामी मार्गशीर्ष 4 गते को होने जा रहे प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा चुनाव में नेपाल समाजवादी पार्टी को अपना चुनाव चिन्ह प्रयोग करने देने का निर्णय किया। ये जानकारी पार्टी के प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महरा ने दी। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ने कहा कि राजनीतिक शुद्धता के लिए निर्वाचन प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। समाजवादी युवा संघ नेपाल के राष्ट्रीय युवा जमघट का आज जनकपुर धाम में उद्घाटन करते हुए अध्यक्ष यादव ने कहा कि निर्वाचन प्रणाली दिन ब दिन महंगी होती जा रही है, जिसके कारण अच्छे और सक्षम लोगों को चुनाव में जीत हासिल करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। नागरिकता विधेयक को वापस लौटाने के राष्ट्रपति के कदम को गलत बताते हुए अध्यक्ष यादव ने कहा कि सरकार में शामिल पार्टियां उक्त विधेयक को प्रमाणीकरण के लिए पुनः राष्ट्रपति के समक्ष भेजेंगे। आगे उन्होंने कहा कि देश में बदलाव लाने के लिए शिक्षा प्रणाली में अमूल्य सुधार करना होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लालबाबू राउत ने बगैर अधिकार की संघीयता से प्रदेश विकास असंभव होने की बात बताते हुए प्रहरी समायोजन करने और साथ ही संघीय निजामती आयन लाने की सरकार से मांग की। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु, हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारु गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने कहा कि सीपमूलक वैज्ञानिक व्यावहारिक और गुणस्तरीय शिक्षा समृद्ध नेपाल की आधारशिला है। पोखरा महानगरपालिका वार्ड नंबर 16 बिंदवासिनी माध्यमिक विद्यालय की हीरक जयंती समापन समारोह में उन्होंने ये बात कही। आज 848 लोगों में कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, वहीं एक संक्रमित की मौत हो गई। ये जानकारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ने दी। पिछले 24 घंटों में 90,447 लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत कश्मीर के पहलगाम में आईटीबीपी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस की बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। इस हादसे में आईटीबीपी के 6 जवानों की मौत हो गई है, कई जवान घायल हुए हैं। घायलों को श्रीनगर के आर्मी अस्पताल में ले जाया गया है। आईटीबीपी की ओर से जारी बयान के अनुसार बस सड़क पर फिसलकर 250 फीट नीचे नदी में जा गिरी। घटनास्थल से आ रही तस्वीरों में बस बुरी तरह से क्षतिग्रस्त दिख रही है। पाकिस्तान के मुल्तान में आज पैसेंजर बस और फ्यूल टैंकर की टक्कर हो गई। 20 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। मरने वालों का आंकड़ा काफी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि कई घायलों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। मुल्तान पंजाब प्रांत के सबसे बड़े शहर लाहौर से 350 किलोमीटर दूर है। पुलिस के मुताबिक घटना के वक्त इलाके में भारी बारिश हो रही थी और बस की रफ्तार काफी ज्यादा थी, जिसकी वजह से हादसा हुआ। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19.6 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रतिनिधि सभा से विभिन्न 4 विधेयक हुए पारित। नेपाल नागरिकता विधेयक 2079 संसद से पारित कर पुनः राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरण के लिए भेजने का सत्ता गठबंधन की बैठक ने किया निर्णय। आगामी मार्गशीर्ष 4 गते होने जा रहे चुनाव के लिए 84 राजनीतिक दलों ने करवाया पार्टी का पंजीकरण और भारत के कश्मीर में बस दुर्घटनाग्रस्त होने से हुई इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के 6 जवानों की मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। शुभरात्रि।